दिन भर तारीख 8 फरवरी दिन शुक्रवार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। बीबीसी के लीडर भी निडर भी कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा उनकी पार्टी तीन तलाक कानून के खिलाफ नहीं।
तो तीन तलाक कानून के खिलाफ कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन तीन तलाक में कुछ बातें हैं, कुछ पेच हैं।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से 30 से अधिक लोगों की मौत। और आज विवेचना में सुनेंगे सबसे कम चर्चित मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में।
हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो महानता ढूंढते हैं, और जहांगीर ने क्योंकि बड़े कॉन्क्वेस्ट नहीं किए, कोई बहुत बड़ा सा मिलिट्री एक्सपेडिशन नहीं किया, सैनिक अभियान नहीं किया, तो अक्सर वो पीछे छूट जाते हैं।
लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज रफाल डील के मामले पर फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदू अखबार में छपी एक खबर के हवाले से कहा, प्रधानमंत्री रफाल डील से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और उन्होंने वायुसेना के 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अपने दोस्त अनिल अंबानी को दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलां ने कहा था कि मोदी ने कहा था एचएएल को ये डील नहीं मिलनी चाहिए, और रक्षा मंत्रालय ने भी ये कहा कि पीएम मोदी ने समांतर डील की है।
The defense ministry itself is saying that the prime minister is conducting parallel negotiations. Mr. Holland said, नरेंद्र मोदी जी मेरे पास आए और नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, एचएएल को परे करना है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने वो साबित कर दिया है और नरेंद्र मोदी जी राफेल मामले में गिल्टी हैं।
इसके उत्तर में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस चिट्ठी का जिक्र राहुल गांधी ने किया उसका उत्तर पहले ही पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अखबार ने आधी अधूरी चिट्ठी छापी है, जबकि पूर्व रक्षा मंत्री का उत्तर भी छापना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला गड़े मुर्दे उखाड़ने के समान है। बीबीसी ने पुष्टि की है कि युगांडा में उसके तीन पत्रकारों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पत्रकारों की ये टीम सरकारी दवाइयों के गैरकानूनी बिक्री पर एक खोजी रिपोर्ट कर रही थी। बीबीसी की एक प्रवक्ता ने कहा कि इस रिपोर्ट पर बीबीसी सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। इधर युगांडा सरकार की प्रवक्ता आफोनो ओपोंडो ने कहा है कि ये पत्रकार युगांडा से दवाओं की चोरी कर उन्हें दक्षिणी सूडान और कांगो गणराज्य में बेच रहे एक समूह के बारे में पड़ताल कर रहे थे। थाईलैंड के राजा की सबसे बड़ी बेटी ने राजनीति में कदम रखने की घोषणा कर दी है और कहा है कि वो आगामी महीने में होने वाले प्रधानमंत्री चुनावों में उम्मीदवार के तौर पर खड़ी होंगी। 1970 में एक अमरीकी व्यक्ति से शादी के बाद उबोल रत्ना माहिडोल ने राजकुमारी का अपना पद त्याग दिया था, लेकिन वो हमेशा थाई राजसी परिवार की सदस्य रही हैं। वो पूर्व सरकार बनाने वाली उस पार्टी से जुड़ी हैं जिसका 5 साल पहले सैन्य विद्रोह ने तख्तापलट कर दिया था। सैन्य समर्थक पीपल्स रिफॉर्म पार्टी की नेता पाइबून नीति तावान ने कहा कि उबोल रत्ना माहिडोल की उम्मीदवारी कानूनों का उल्लंघन हो सकती है। प्रधानमंत्री के पद के लिए थाई सेव द नेशन पार्टी की तरफ से राजकुमारी उबोल रत्ना राजकन्या श्री श्री वदना वरनावदी की उम्मीदवारी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा जरूर होगा कि चुनाव के अभियान में पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए राजकुमारी के नाम का इस्तेमाल किया जाएगा, और स्वाभाविक तौर से देखा जाए तो ये चुनाव के कानूनों का उल्लंघन होगा। ये थी पीपल्स रिफॉर्म पार्टी के नेता पाइबून नीति तावान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मालदीव की सरकार ने महाभियोजक से कहा है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करें। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि पुलिस की जांच में सरकारी पैसों के हेरफेर और गबन के मामले के तार यामीन और उनके एक पूर्व साथी से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा है कि लाखों डॉलर देश के बाहर ले जाए गए हैं और इस हेरफेर में पूरी पड़ताल के लिए सरकार दूसरे देशों से भी मदद की गुहार लगा रही है। अब्दुल्ला यामीन खुद पर इन सभी आरोपों से इनकार करते हैं। बीते साल दिसंबर में कोर्ट ने कथित तौर पर यामीन से जुड़े बैंक खाते में रखे गए $65,00,000 को फ्रीज कर दिया था। तुर्की के इस्तांबुल शहर में ध्वस्त हुई एक इमारत के मलबे से 40 घंटे बाद एक युवक को सकुशल निकाला गया है। यह रिहायशी इमारत बुधवार को गिर गई थी। इमारत के मलबे से युवक की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनने के बाद राहत कर्मियों ने उसे बचाया। बीबीसी समाचार।
अभिवादन स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। बीबीसी ने आज दिल्ली में पंचायत से लेकर संसद तक पहुंची महिला नेताओं से बातचीत के कार्यक्रम का आयोजन किया। लीडर भी निडर भी नाम के इस कार्यक्रम में कांग्रेस से लेकर बीजेपी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी की नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने कहा कि उनका दल तीन तलाक कानून के खिलाफ नहीं है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं स्टूडियो में मौजूद बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। जी फैसल साहब बताएं।
शायद तीन तलाक के मामले में जो कुमारी शैलजा ने कहा वो एक सवाल के जवाब में था जो वहाँ मौजूद लोगों में पूछा गया था। उनका कहना था कि बिल में जो क्रिमिनलिटी का जो क्लॉज है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी में सोच जो है वो अलग है।
तीन तलाक कानून के खिलाफ कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन तीन तलाक में कुछ बातें हैं, कुछ पेच हैं कि अगर आप एक पुरुष को अंदर कर देंगे, सीधा ही क्रिमिनलिटी उसमें डाल देंगे, तो जो परिवार है उसका पालन पोषण कौन करेगा। एकदम आपने उसको क्रिमिनल, हम केवल क्रिमिनलिटी के खिलाफ थे कांग्रेस पार्टी, बाकी इस कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी नहीं है।
अब जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी इस बिल को लाना चाहती है, पहले अध्यादेश भी लाया गया, तो इसको लेके काफ़ी जो है राजनीति चल रही है। कुमारी शैलजा जो हैं हरियाणा के हिसार से ताल्लुक़ रखती हैं और लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य हैं, और बीबीसी से एक रैपिड फायर राउंड में उन्होंने ये भी साफ किया कि कांग्रेस अगर आम चुनाव में जीतती है तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि एक सवाल बार बार उठ रहा था। बीबीसी ने एक सत्र पंचायत स्तर की महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ भी रखा था, जैसा कि आपने कहा। इसमें शामिल सोनी सोढ़ी, जिन्हें नक्सल बताकर जेल में रखा गया था और बहुत ही गंभीर किस्म के टॉर्चर उनके साथ किए गए थे, उन्होंने कहा कि वो हारी नहीं है।
मैंने कहा मैं जीत गई हूँ। जिस छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे माओस्ट करके 2.5 साल जेल में रखा, मैं उस सरकार के अंदर में आके चुनाव लड़ा, ये मेरी पहली जीत थी। और दूसरी जीत थी कि मेरे को अपना जन्मभूमि चाहिए था, वो मुझे मिल गया। और तीसरी मेरी ये जीत थी कि मेरे अपनों के लोगों के बीच में मैं जमीन स्तर में बैठ के काम करूँगा, वो मेरा सत्ता था। इसलिए मेरी एक जीत थी, मेरी हार नहीं, मैंने कभी अपने आप को हार नहीं माना।
और बीजेपी की नेता स्वाति सिंह जो थी, उन्होंने एक विरोधाभास जो है वो समाज में उसके बारे में बात की।
क्योंकि मैं जनरली जब इंटरव्यूज में जाती हूँ या कहीं जाती हूँ तो मुझे लगता है कि दयाशंकर जी से कभी स्वाति सिंह के बारे में नहीं पूछा जाता है, लेकिन स्वाति सिंह से ज़रूर दयाशंकर जी के बारे में पूछा जाता है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की मानसिकता आज भी वही है कि अगर पत्नी है तो पति को ज़रूर साथ लेकर चले।
तो ये पूरा जो लोग सुनना चाहें वो बीबीसी के फेसबुक पर या यूट्यूब पन्ने पर आकर सुन सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया फैसल मोहम्मद अली इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत की खबर है। यूपी के सहारनपुर और कुशीनगर जबकि उत्तराखंड के रुड़की में ये घटनाएं हुई हैं। यूपी में योगी सरकार ने 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि मौत के आंकड़े अभी बढ़ भी सकते हैं। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
जहरीली शराब पिछले 2 दिन में पूर्वी यूपी के कुशीनगर और पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में कहर बना
था। जी शाम के टाइम पिंटू हर की तरफ गया था और वहाँ से मैं रात को 10 बजे लाया था। 10 बजे लाया था मैं रात को और सुबह ही इसको उल्टी हुई 4 बजे और फिर हमें हॉस्पिटल में ले गए।
कुशीनगर में 2 दिन में जहां 8 लोगों के मरने की खबर है तो सहारनपुर में भी अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अपुष्ट आंकड़ों में यह संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है। सहारनपुर के बारे में राज्य के DGP OP सिंह ने बताया।
जहरीली शराब पीने से वहाँ का देवबंद सर्किल है, उसके थाना नागल में, वहाँ एक गांव है हुमाई कोटा, उसमें 5 व्यक्तियों की, और एक सलेमपुर गांव है वहाँ 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। 3 व्यक्ति अभी भी अस्पताल में हैं। जो प्रारंभिक विवेचना हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स वगैरह सब मौके पर पहुँचे, जो प्रारंभिक विवेचना हुई है उससे पता चला है कि ये जहरीली शराब उत्तराखंड के जनपद रुड़की के थाना झबरेड़ा क्षेत्र से लाई गई थी।
सहारनपुर के पड़ोस में ही उत्तराखंड के रुड़की में भी जहरीली शराब पीकर कई लोगों की मौत की खबर है। हरिद्वार जिले के DM ने 14 मौतों की पुष्टि की है जबकि 40 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सहारनपुर के पत्रकार रियाज हाशमी के मुताबिक उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव और यूपी के सहारनपुर के नांगल और गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के तमाम गांव भौगोलिक रूप से एक दूसरे के सीमावर्ती हैं। दोनों ही जगहों पर जहरीली शराब से बीमार हुए तमाम लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं कुशीनगर के एएसपी एचपी मिश्र का कहना था कि मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस प्रकरण में जो गांव वालों की बातचीत के आधार पर जो मुख्य आरोपी उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है और विभाग के लोग भी उनकी भी संलिप्तता इसमें आएगी, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और शुरुआती जांच के आधार पर थानेदार और आबकारी निरीक्षक समेत 10 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए और मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
उत्तर भारत के बाद अब रुख करते हैं श्रोताओं दक्षिण भारत का। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आज 2 ऑडियो क्लिप जारी करके बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा पर उनकी सरकार गिराने का आरोप लगाया। कुमारस्वामी का कहना है कि येदियुरप्पा ने उनकी पार्टी के विधायक को 25 करोड़ रुपए रिश्वत का प्रस्ताव दिया है और विधानसभा के स्पीकर को भी पैसे देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
जेडीएस कांग्रेस की गठबंधन सरकार को बने अभी सिर्फ 8 महीने ही हुए हैं, लेकिन कर्नाटक में फिर से टेप जारी होने की राजनीति शुरू हो गई है। पिछले साल मई महीने में जब बीजेपी को सरकार बनाने में 10 विधायकों की जरूरत थी तो तब कांग्रेस ने कई ऑडियो टेप सार्वजनिक किए जिनमें बीजेपी पर आरोप लगाए गए थे कि वो उसके सदस्यों को रिश्वत देकर अपने दल में लाने की कोशिश कर रही है। आज उसी तरह मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 2 टेप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किए जिसके आधार पर उन्होंने बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा पर आरोप लगाया कि वो उनके गुरमीत कल के एमएलए को रिश्वत देकर जेडीएस से निकलने के लिए कह रहे हैं। कुमारस्वामी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा,
नरेंद्र मोदी बंद मेले बदलावे मास्बोदी,
हम सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काला धन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अमित शाह के निर्देशों पर बीएस येदियुरप्पा संस्थानों को ही खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। येदियुरप्पा ने कहा है कि पैसा विधायक को मुंबई में दिया जाएगा। ये थे एचडी कुमारस्वामी के शब्द। कुमारस्वामी ने कहा कि जेडीएस के गुरमीतकल क्षेत्र के विधायक नागनगौड़ा नायक के बेटे को येदियुरप्पा के एक साथी ने कल रात फोन पर संपर्क किया और कहा कि वो उनसे फौरन मिले। नागनगौड़ा नायक के बेटे शरणगौड़ा नायक ने कहा, मुझे कल रात 11 बजे के करीब फोन आया और मैंने फौरन कुमारस्वामी भाई से संपर्क किया। मैं रात के 1 बजे के करीब यादगीर से देवदुर्गा पहुंचा और सारी बातचीत फोन पर रिकॉर्ड कर ली। इस रिकॉर्ड में येदियुरप्पा ने खुद मुझसे कहा कि वो मेरे पिताजी को विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद मुझे पार्टी की टिकट देंगे और मंत्रिमंडल में अच्छी जिम्मेदारी देंगे ताकि अच्छा पैसा बना सकें। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने असेंबली के स्पीकर को 50 करोड़ रुपए दिए हैं और वो मेरे पिताजी के इस्तीफे को रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये थे शरणगौड़ा नायक के शब्द। लेकिन येदियुरप्पा ने इन सारे इल्जामों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, अगर कुमारस्वामी इस बात को साबित कर सकते हैं कि मैंने स्पीकर को पैसे देने की बात की है तो मैं फौरन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा। ये थे बीएस येदियुरप्पा के शब्द। दरअसल कर्नाटका में अब ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस के नाराज विधायकों की संख्या 5 से ज्यादा नहीं है। अगर गठबंधन सरकार को अल्पमत में लाना है तो करीब 15 से भी ज्यादा सदस्यों का इस्तीफा चाहिए होगा, लेकिन आज की परिस्थितियों में वो लगभग असंभव है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
बीबीसी इंडिया बोल।
शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने गई सीबीआई के विरोध में ममता बनर्जी ने दिया धरना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सीबीआई पर लगाया है मोदी सरकार के इशारे पर चलने का आरोप। क्या सीबीआई वाकई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है? बीबीसी इंडिया बोल में इस हफ्ते चर्चा होगी इसी विषय पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 9 फरवरी शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1800-11-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
श्रोताओं, हाल ही में पार्वती शर्मा की एक किताब प्रकाशित हुई है, एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रेट मुगल जहांगीर, जिसमें उन्होंने मुगल सल्तनत के चौथे बादशाह जहांगीर के जीवन पर बारीक नजर दौड़ाई है। आम लोगों की धारणा है कि अकबर का बेटा और औरंगजेब का दादा जहांगीर एक कमजोर बादशाह था जिसका ध्यान बादशाहत में कम जीवन का आनंद उठाने में अधिक लगता था। लेकिन क्या जहांगीर का ये मूल्यांकन सही है? बता रहे हैं रेहान फजल आपके बेहद पसंदीदा विवेचना में।
सत्ताईस साल की उम्र तक अकबर के जीवन की एक त्रासदी थी कि उनके कोई बेटा नहीं था। 1564 में उनके दो जुड़वा बेटे जरूर पैदा हुए थे, हसन और हुसैन, लेकिन वो सिर्फ एक महीने तक ही जीवित रह पाए थे। उन्होंने अपने प्रिय संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से यहां तक कहा कि अगर आप मुझे एक बेटा दे दें तो मैं आगरा से अजमेर पैदल चलकर आपकी दरगाह पर सिर झुकाऊंगा। आखिर ईश्वर ने उनकी सुन ली और उनके दरबारियों ने उन्हें खबर दी कि आगरा के पास ही एक पहाड़ी पर एक और पीर सलीम चिश्ती रहते हैं जो आपकी मुराद पूरी कर सकते हैं। जहांगीर पर एक किताब एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ ए ग्रेट मुगल जहांगीर लिखने वाली पार्वती शर्मा बताती है।
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो वो नहीं कर पाते थे, पर बस उनकी औलाद नहीं थी। तो फाइनली शेख सलीम चिश्ती ने उनसे कहा कि नहीं, आपके होंगे तीन बेटे होंगे, और फाइनली फिर सलीम पैदा हुए। पर एक और कहानी है कि जैसे शेख, जैसे ये शहजादे सलीम की पैदाइश के जिम्मेदार शेख सलीम थे, वैसे ही एक तरह से शेख सलीम चिश्ती की मौत की जिम्मेदारी भी शायद थोड़ी शहजादे सलीम पे आती है कि उनके जन्म के कुछ दिनों बाद अकबर गए फिर से शेख सलीम से मिलने, और उन्होंने उनसे पूछा, पता नहीं क्यों पूछा, कि आप कितने दिन जिएंगे। और उन्होंने कहा कि जब ये सलीम कोई चीज़ याद कर लेगा, उसको फिर दोहराएगा, दैट्स व्हेन आई विल डाई। सो फिर एक हुक्म दिया गया कि बच्चे को कुछ ना सिखाया जाए। दो साल सात महीने की उम्र थी सलीम की जब कि कोई एक नर्स आई, अकेले पाया शहजादे को, और कुछ पोइट्री रिसाइट कर रही थी, तो सलीम को भी सुनाई, और सलीम को याद हो गई ये पोएम, और जाके फिर सलीम ने दोहराई अपने ट्यूटर को, और ट्यूटर अकबर के पास गए, और श्योर इनफ खबर आई कि शेख सलीम बीमार पड़ गए हैं।
जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वो महान मुगलों में सबसे कम चर्चित मुगल थे, शराबी थे, और उनका ध्यान सैनिक अभियानों पर न रहकर कला और जीवन के सुखों और शानो शौकत पर अधिक रहता था। क्या जहांगीर का ये मूल्यांकन सटीक है? मैंने ये सवाल पूछा दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में इतिहास पढ़ाने वाली अनुभूति मौर्य से।
बाबर के बाद जहांगीर पहले मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में खुलासे से लिखा है। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो महानता ढूंढते हैं, और जहांगीर ने क्योंकि बड़े कॉन्क्वेस्ट नहीं किए, कोई बहुत बड़ा सा मिलिट्री एक्सपीडिशन नहीं किया, सैनिक अभियान नहीं किया, तो अक्सर वो पीछे छूट जाते हैं। मेरे हिसाब से जहांगीर अपने आप में एक नायाब आदमी थे, क्योंकि उनकी क्या सोच थी हमें बहुत डिटेल में मिलती है। उसके साथ साथ वो अपने समय के प्रोडक्ट थे, अपने आप में वो एक तरीके की खिड़की थे जिसके जरिए हम देख सकते हैं कि 17वीं शताब्दी का आदमी क्या सोच रहा था। जहांगीर अक्सर अक्ल और नकल, तार्किकता के आधार पे अपने इर्द गिर्द की दुनिया को जांचते हैं, समझते हैं, परखते हैं।
जहांगीर के बारे में मशहूर था कि वो औरतों और शराब के शौकीन थे। वो अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में लिखते हैं कि एक समय वो दिन में शराब के 20 गिलास पीते थे, 14 दिन में और 6 रात में। बाद में वो उसे घटाकर एक दिन में 6 पर ले आए थे।
खुद ही कहते हैं कि मैं 18 साल का था, ये शिकार पे गए थे, थोड़ी थकान महसूस हुई, किसी ने कहा कि आप थोड़ी वाइन पीजिए तो आपकी थकान चली जाएगी, तो उन्होंने पी, कहा कि मुझे बहुत पसंद आई, और फिर रोज के रोज और पीने लग गए। जहांगीर के दोनों भाई भी बिल्कुल एडिक्टेड हो गए थे शराब से, दोनों मरे, इनफैक्ट अल्कोहल पॉइजनिंग से दोनों मरे। बाबर भी पीते थे, अकबर भी थोड़ी बहुत पीते थे, शाहजहाँ कम, जहांगीर को इनफैक्ट थोड़ा अफसोस था कि शाहजहाँ, मतलब 24 साल की उम्र का हुआ शाहजहाँ के, और जहांगीर ने लिखा कि आज तक इसने एक घुट शराब का नहीं पिया, ये कैसे हो सकता है।
अकबर और जहांगीर के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। उनमें और कटुता तब आ गई जब जहांगीर ने अकबर के बहुत करीबी और उनके जीवनीकार अबुल फजल को ओरछा के राजा बीर सिंह देव के हाथों उस समय मरवा दिया जब वो डेक्कन से आगरा की ओर आ रहे थे। इस हत्या का सबसे जीवंत वर्णन असद बेग अपनी किताब वाकए असद बेग में लिखते हैं।
वीर सिंह के हर सिपाही ने कवच पहन रखे थे। उनकी तलवारें और भाले हवा में बिजली की तरह चमक रहे थे। तेज भागते घोड़े पर सवार एक राजपूत ने अबुल फजल पर बरछे से इतनी तेजी से वार किया कि वो उनके शरीर के दूसरे सिरे से बाहर निकल गया। फजल नीचे गिरे और उनके शरीर से तेजी से खून निकलने लगा। उनका खुद का घोड़ा उन्हें रौंदता हुआ निकल गया। ताजुब है कि घोड़े के भार से उनकी मौत नहीं हुई। फजल अभी जीवित थे। वीर सिंह वहां पहुंच गए। वो उनकी बगल में बैठे उन्होंने अपनी जेब से एक सफेद कपड़ा निकाला और उससे फजल के शरीर से निकलते हुए खून को पोंछा। इसी समय फजल ने अपनी सारी ताकत जुटाते हुए बुंदेला प्रमुख की गद्दारी के लिए उसे कोसा। वीर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में अबुल फजल का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया।
ये तथ्य है कि अबुल फजल की नजर में जहांगीर बहुत ऊंची जगह नहीं रखते थे, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी उनको मरवाने की?
एक राजनीतिक गेम चल रहा था, खेल चल रहा था कि गद्दी पे कौन बैठेगा। अकबर की शक्तियां क्षीण हो रही थीं, वो थक रहे थे अब, और जहांगीर को अब लड़ाई करनी थी आने वाली पीढ़ी से। जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है इस हादसे के बारे में, वो है तीन चीजें। पहला है अकबर का रिएक्शन जब उन्हें खबर मिली अबुल फजल के देहांत के बारे में। जब उन्हें पता चला तो उनका रिस्पांस जहांगीर की क्रूरता के प्रति नहीं था, एक गहरा दुख था। वो फेंट हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। दूसरा, जहांगीर इसके बारे में बिना किसी ग्लानी के लिखते हैं कि ये मैंने किया। और जो बुंदेला राजा को उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके साथ मुगल कोर्ट का हमेशा एक टेंशन रहता था। वो बुंदेला राजा ऐसा नहीं है कि जहांगीर के लंगोटिया यार थे। और फाइनली जब वो अबुल फजल के बेटे से मिलते हैं, वहां पे भी कोई गिल्ट हमें नहीं दिखता। तो जहांगीर जब लिखते हैं तो बहुत क्लियरली लिखते हैं कि मेरा मकसद था बादशाह बनना। अबुल फजल अगर दरबार में वापस पहुंचते तो मैं बादशाह शायद नहीं बन पाता। और जब उनके बेटे से मिलते हैं, उनके शासन के अंत तक अबुल फजल के बेटे उनके बहुत ही करीबी विश्वसनीय एक मंत्री के रूप में उभरते हैं।
17 अक्टूबर 1605 को अकबर के देहावसान के बाद जहांगीर मुगल तख्त पर आसीन हुए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत मूडी बादशाह थे, कभी बहुत दरिया दिल तो कभी बहुत खूंखार। जहांगीर की क्रूरता का ब्यौरेवार वर्णन एलिसन बैंक्स फिंडली ने अपनी किताब नूरजहां इम्प्रेस ऑफ मुगल इंडिया में किया है।
जहांगीर ने अपने एक नौकर का अंगूठा सिर्फ इसलिए कटवा दिया क्योंकि उसने नदी के किनारे लगे चंपा के कुछ पेड़ काट दिए थे। उसने नूरजहां की एक नौकरानी को एक गड्ढे में आधा गड़वा दिया था। उसका अपराध था एक किन्नर का चुंबन लेते पकड़े जाना। एक आदमी को अपने पिता की हत्या की सजा देते हुए जहांगीर ने उसे एक हाथी की पिछली टांग से बंधवा कर कई मील तक खिंचवाया था। अपने खुद के बेटे खुसरो के विद्रोह करने पर जहांगीर ने उसे मौत की सजा न देकर उसकी आंख फुड़वा दी थी। एक बार इस तरह की सजा देने के बाद शायद ही जहांगीर ने उसे बदला हो। हाँ, अपने बेटे खुसरो को अंधा किए जाने के बाद उसने उसकी आंखों का इलाज जरूर करवाया था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आई।
गद्दी संभालने के 6 साल बाद 42 साल की उम्र में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की। उस समय नूरजहां की उम्र 34 साल की थी। जहांगीर और नूरजहां के इश्क की शुरुआत का चित्रण रूबीलाल अपनी किताब एम्प्रेस द एस्टोनिशिंग रेन ऑफ नूरजहां में करती हैं।
जब बादशाह जहांगीर बाग में आए तो उनके दोनों हाथों में कबूतर का एक जोड़ा था। उन्हें एक बहुत खूबसूरत फूल दिखाई दिया जिसे वो तोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके दोनों हाथ आजाद नहीं थे। तभी एक खूबसूरत महिला वहां से गुजरी। जहांगीर उस महिला के दोनों हाथों में कबूतर पकड़ाकर फूल तोड़ने के लिए मुड़ गए। जब वो वापस मुड़े तो उन्होंने देखा कि उस महिला के हाथ में सिर्फ एक ही कबूतर है। उन्होंने उससे दूसरे कबूतर के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया, महामहिम, वो तो उड़ गया। बादशाह ने पूछा, कैसे? उस महिला ने हाथ बढ़ाते हुए दूसरा कबूतर भी उड़ाकर कहा, ऐसे।
जहांगीर और नूरजहां की एक और दिलचस्प कहानी जहांगीर के दरबार में दूत रहे सर टॉमस रो ने अपने पत्रों में बयान की है।
एक रात को जहांगीर से मिलना चाह रहे थे कहीं कैंप में, दिन भर उन्होंने उनका इंतज़ार किया, जहांगीर कहीं गए हुए थे या शिकार पे, अंधेरा हुआ तो लैंप्स जलाए गए, फिर अचानक एक ऑर्डर आया कि सब लैंप्स को बुझा दिया जाए, क्योंकि जहांगीर ने रास्ते में एक बैलगाड़ी दिखी थी, उनका मन किया कि मैं बैलगाड़ी चलाऊं, तो बैलगाड़ी पे बैठ गए और अपने साथ में उन्होंने नूरजहां को बिठाया और दोनों मतलब बादशाह और बेगम बैलगाड़ी पे सवार कैंप में आ रहे थे। ये मुझे इमेज बहुत अच्छी लगती है कि बादशाह, पूरे मुगल हिंदुस्तान के बादशाह जहांगीर, उनके साथ में उनकी बेगम नूरजहां बैलगाड़ी चला के मतलब मजे में आ रहे हैं वापस शिकार के बाद।
जहांगीर ने शेरशाह सूरी की पुरानी परंपरा जारी रखी थी, जहां बादशाह अपनी महत्वपूर्ण बैठक अपने गुसलखाने यानी स्नान घर में करता था। इसका कारण यह था कि शेरशाह के बाल बहुत लंबे और घुंघराले होते थे, जिन्हें सूखने में बहुत वक्त लगता था। जहांगीर अपने बाल भी गुसलखाने में ही कटवाया करते थे।
सुबह एट डॉन ही वुड वेक अप, दर्शन देते थे अपने जनता को, फिर वापस अंदर जाके थोड़ा मतलब नाश्ता वाश्ता करते थे, थोड़ा एक घंटा और सोते थे, फिर दोपहर में आके पब्लिक दरबार होता था, फिर शाम को जो गुसलखाना जिसको कहते हैं वहाँ जाते थे और वहाँ बैठ के नोबिलिटी के साथ वाइन वगैरह पीते थे, गुफ्तगू करते थे और फिर सो जाके बीच रात उठते थे और फिर गरीब लोग और जो फकीर और ऐसे मतलब ऐसे लोगों में जो होली मैन में वो खाना और पैसा बांटते थे।
लेकिन 1627 आते आते जहांगीर का स्वास्थ्य खराब हो चला था। 28 अक्टूबर 1627 को राजौरी और भिंबर के बीच 58 साल की उम्र में जहांगीर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। जब नूरजहां सुबह उन्हें जगाने के लिए गई तो जहांगीर ने अपनी आंखें नहीं खोली। नूरजहां की आंखों से आंसू टपकने लगे और मौलाना हिसामुद्दीन ने बादशाह की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी।
जहांगीर को दमे की बीमारी थी, जो नॉर्थ इंडिया की गर्मी और धूल थी उसको सह नहीं कर पाते थे, तो अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में अक्सर वो कश्मीर की तरफ गए। जब वो गए तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो सब लोग उनकी मौत का इंतजार कर रहे थे और अपना पॉलिटिकल प्ले कर रहे थे, वो सब उनके साथ जाएं। तो नूरजहां तो गईं और शहरयार को भी जाना पड़ा जो नूरजहां के दामाद थे, और आसफ खान को भी जाना पड़ा जो इनको गद्दी पे बिठाने के लिए बेकरार थे शाहजहां को। वो घूमे और फिर राजौरी के रास्ते, पखली के रास्ते, राजौरी के रास्ते वो वापस जब निकले, तब तक वो खा पी भी नहीं पा रहे थे। उसमें चंगेज हट्टी नाम की एक जगह थी जहाँ पे जहांगीर गुजरते, और ये मुश्किल सी जगह थी पहाड़ पे। जब मृत्यु हुई तो उनकी बॉडी को इम्बाम करवाया, तो जो आंतड़ियाँ निकालते हैं इम्बाम करने के समय, उन्हें वहीं चंगेज हट्टी में दफनाया गया। फिर पालकी में बॉडी को बिठाया, तो जैसे कि जहांगीर बैठे हुए हैं, वो पालकी धीरे 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 करके वापस आई।
महलों में सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, मिट्टी में सो रहे हैं, दो गजमी का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना कैसी लगी हमें जरूर लिखें, और अब समय है खेल समाचारों का।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने आज मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। कप्तान रोहित शर्मा का शानदार अर्धशतक और कृणाल पांड्या की कसी हुई गेंदबाजी की मदद से भारत ने ये मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने आज ऑकलैंड में ही खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और भारत को निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 136 रन पर ही रोक दिया। इस लक्ष्य को हासिल करना कीवी टीम के लिए आसान नहीं रहा। उन्होंने 6 विकेट खोकर आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल करते हुए मैच अपने नाम किया। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रफाल डील के मामले में कहा है कि
प्रधानमंत्री रफाल डील से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और उन्होंने वायुसेना के 30,000 करोड़ रुपए चोरी कर अपने दोस्त अनिल अंबानी को दिए हैं। बीबीसी ने पुष्टि की है कि युगांडा में उसके 3 पत्रकारों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। थाईलैंड के राजा की सबसे बड़ी बेटी ने राजनीति में कदम रखने की घोषणा कर दी है और कहा है कि आगामी महीने होने वाले प्रधानमंत्री चुनावों में वो उम्मीदवार के तौर पर खड़ी होंगी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला रवि कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।